अध्याय 8 रूप विन्यास। भावावेग से उत्पन्न अंतर्दृष्टिदायिनी और सृष्टिविधायिनी कल्पना ने कविता के रूप विन्यास में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया कि बड़े बड़े सुधी समालोचकों को भी छायावाद केवल नई काव्य शैली प्रतीत हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। निःसंदेह द्विवेदी युग की तुलना में छायावादी कविता का रूप विन्यास इतना भिन्न और भव्य था कि अधिकांश पाठकों की आंखें चौधिया उठी। उस रूप की कांति से आतंकित होकर वे उसी को सब कुछ समझने लगे। उस हुस्न का इतना रूप था कि देखने वाले उसके भीतर की और कोई चीज ही न देख सके। उस रूप विन्यास के पीछे काम करने वाली रुचि और सौंदर्य भावना उनसे अनदेखी ही रह गई। मुग्ध दर्शक केवल रूप ही देखते रह गए। छायावादी कवि ने भी बड़े गर्व के साथ इस रूप सृष्टि को उपस्थित किया था और अपने मित्र को चुनौती देते हुए कहा था, लखो दिया है पहना, किसने या हार बना, भारतीय उर में अपना देख दृघ थके। और सचमुच ही मित्र के दृघ उसे देख थके। उसने उस हार का सौंदर्य तो देखा परंतु उसकी समझ में नहीं आ सका कि यह हार आया कहाँ से। कवि ने तो अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया था कि यह हार किसी बाजार से नहीं खरीदा गया है। यह हार उन मोतियों से बना है जो हृदय की शुक्तियों से पैदा हुए और फिर हृदय की शुक्ति में भी वह मोती अपने आप नहीं पैदा किया। कल्पना के आकाश से भावों की जो वर्षा हुई उसी के कणों को हृदय में धारण करके कवि ने ये मोती उपजाए थे। परंतु वर्षा का वह जल भी शुद्ध आकाश की उपज न था। वह जल भी मूलतः धरती का ही था। वे बादल भी पृथ्वी के हृदय समुद्र से ही उठे थे। उस कल्पना की भी उत्पत्ति समाज से हुई थी। प्राचीन और नवीन संघर्ष के फलस्वरूप जो भयंकर सामाजिक तूफान उड़ा था उसी के द्वारा समुद्र से वे वारिकण उड़े थे। उड़े हुए थे जो कण उतरी पार्श्व वर्षण सुक्त के हृदय से बन मुक्ता झलके। इस तरह छायावादी काव्य सौंदर्य की उत्पत्ति के विषय में छायावाद की ओर से बोलते हुए निराला ने स्पष्ट कर दिया कि इसकी उत्पत्ति कवि के उस हृदय से हुई है जो सामाजिक आंदोलन से उत्थित भावावेग और कल्पना को धारण करने वाला है। दूसरे शब्दों में इसका आधार भावात्मक और सामाजिक है। निराला के इस युक्ति को तुलसी के अनुलिखित रूपक के साथ मिलाकर देखिए तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सजाना, जो बरखई बर बार विचारु, हुए कवि मुक्ता मणिचारु, जुगति बोधि पुनि पुष्पहि अहि, रामचरित वर ताग, पहिरहि सज्जन विमलउर, शोभा अति अनुराग। तात्पर्य यह कि रूप विन्यास आंतरिक सौंदर्य भावना का परिणाम होता है। छायावाद के पूर्ववर्ती द्विवेदी युग की कविता में जो अत्यंत सादगी और अनलंकृत दिखाई पड़ती है उसे शुद्धतावादी भावना का परिणाम समझना चाहिए। द्विवेदी युग की कविता का रूप विन्यास आर्य समाजी सौंदर्य भावना से प्रेरित था। इसीलिए वह कविता आर्य समाज के उपदेशकों की तरह अपने वेश विन्यास में एकदम सादी थी। उसमें राग रंग की वस्तुओं का सर्वथा बहिष्कार था। अपने को सजाकर मोहक बनाने की जगह केवल जरूरत की चीज़ों से ही काम लेने की प्रवृत्ति थी। उपमाएं बहुत कम और भरसक पूर्व परिचित ही रखी गई। तथ्य के सीधे कथन का आग्रह अधिक था, जैसे प्रकृति चित्रण करना हुआ तो कहीं लौकियां लटक रही हैं, काशी फल कुष्मांड कहीं हैं। और यदि किसी मार्मिक तथ्य का उल्लेख करना हुआ तो हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। न कहीं उपमा न रूपक, व्यर्थ का बद बढ़ाव नहीं, जो बात है ज्यों की त्यों रख दी गई। आवश्यकता से अधिक एक ही शब्द ने सुंदर बनाने की परवाह नहीं, जैसे रुचि वैसा रूप, तापस भाव तापस रूप। लेकिन छायावादी कवि के हृदय में प्रेम और श्रृंगार की भावना हिलोरे ले रही थी। यदि किसी कवि के हृदय में साज सज्जा के लिए बाल सुलभ उमंग थी तो किसी के मन में यौवन सुलभ श्रृंगार की तरंग और किसी में अल्हड़ मस्ती की बाकी अदा। यह रुचि कोरी आवश्यकता से कहीं आगे की सोचती थी। उपयोगिता के संकुचित सीमा से निकलकर वह कला के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाला कलाकार था। सादगी उसका आदर्श नहीं और न कट्टर शुद्धिवादी रूप विन्यास में उसका विश्वास। जहाँ एक उपमा से काम चल सकता है वहाँ 10 उपमाएँ उलेट दी और वे भी एक से एक अनूठी। सीधी बात भी एक प्रकार के विलक्षण से भंगिमा में खड़ी है। भाव के तरंगे रूप सागर में उठकर हिलोरे ले रही हैं। रूप की रेखाएं बारीक भाव को सजोए हुए हैं। सजावट कुछ ज़्यादा हो गई तो क्या, रंग अधिक चटक हो गया तो हो। लोग कृत्रिमता का आरोप करते हैं तो करें, स्वयं प्रसाधन के ये साधन में यदि कलरव कोलाहल करके कविता का उपहास करते हैं तो करते रहें। कवि इसके कारण कहीं भी कुंठित नहीं है, क्योंकि वह प्रिय के पथ पर चल रहा है। प्रिय पथ पर चलते सब कहते सिंगार, मौन रही हार। सेब की तरह रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण यदि बाहर झलक पड़े तो कोई क्या करे। छायावादी कवि के हृदय पर सौंदर्य का जो अपार सागर लहरा रहा है वह यदि कविता के रूप विन्यास को भी उमड़ कर रंजित कर गया तो क्या आश्चर्य। परंतु यह अलंकार प्रियता या रूप सज्जा रीतिवादी कविता से काफी भिन्न है। रीतिकाल और छायावाद की कविता के रूप विन्यास में वही अंतर है जो दोनों युगों की नारियों अथवा पुरुषों के रूप विन्यास में अंतर है। रीतिकाल की कविता मध्ययुगीन राजा और रानी की तरह अनेक प्रकार के आभेद्य निबंधनीय प्रक्षेप्य और आरोप्य अलंकारों का पुंज मालूम होती है। रीतिकालीन कविता की इस अलंकृति पर आधुनिक रुचि के लोगों ने काफी नाक भौं सिकोड़ी है। स्वयं छायावादी कवियों ने भी इसकी कम आलोचना नहीं की। पल्लव की भूमिका में इसका मजाक उड़ाते हुए पंत कहते हैं, इनोटेड कामा, स्वस्थ वाणी में जो एक सौंदर्य मिलता है उसका कहीं पता नहीं। उस सुधो पायन धरी सके शोभा ही के भार वाली ब्रज की वावसक सज्जा का सुकुमार शरीर अलंकारों के अस्वाभाविक बोझ से ऐसा दबा दिया गया कि उसके कोमल अंगों में कलम की नोक से और संस्कृत रुचि की स्याही का ऐसा गोदना भर दिया गया कि उसका प्राकृतिक रूप रंग कहीं दिख ही नहीं पड़ता। यूनाइटेड कॉमन। परंतु रीतिकाल की अलंकृति का यह दोष नहीं था कि उसमें अनावश्यक बहुलता थी। जहां तक साज सज्जा की अतिशयता का सवाल है, छायावाद रीतिवादी कविता से किसी बात में कम नहीं है। स्वयं पंत ने ही आधुनिक कवि पुस्तक माला में संकलित अपनी रचनाओं का पर्यालोचन करते हुए स्वीकार किया है कि इन्वर्टेड कॉमा छायावाद काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया है और उसमें केवल टेक्निक और आवरण मात्र रह गया है। इन्वर्टेड कॉमा इसीलिए रीतिकाल और छायावाद की कविता के रूप विन्यास का अंतर अलंकारों के बहुलता और न्यूनता का नहीं बल्कि उन अलंकारों के पीछे काम करने वाले रुचि अथवा सौंदर्य भावना का है। एक के पीछे मध्ययुगीन रुचि है तो दूसरे के पीछे आधुनिक रुचि। ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप आधुनिक युग ने मध्ययुग के अधिकांश अलंकारों और वेश विन्यास के ढंग छोड़ दिए। यह केवल यूरोपीय प्रभाव ही नहीं है, भारत में आधुनिक सौंदर्य बोध के विकास में निसंदेह एक हद तक यूरोपीय सौंदर्य बोध का काफी योग है। परंतु यह भी निश्चित है कि यूरोपीय प्रभाव के बावजूद भारत में स्वतंत्र रूप से आधुनिक सौंदर्य भावना का विकास हुआ। छायावादी कविता का रूप विन्यास इसी आधुनिक सौंदर्य भावना पर आधारित है। इस सौंदर्य भावना की पहली विशेषता है स्वाभाविक सौंदर्य की अधिक से अधिक रक्षा तथा उसकी सहजता का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त प्रसाधन का आरोप। रीतिकाल तक आते आते इस सहज प्रसाधन का अभाव हो गया था। जिस सामंती सौंदर्य भावना का अभ्युदय कालिदास की रचनाओं में दिखाई पड़ता है वह सामंती व्यवस्था के ह्रास के साथ धीरे धीरे परिपाटी विहित हो गई। कालिदास की नायिकाएं धातु निर्मित अलंकारों से अधिक अशोक पूर्वक कदम शीरीष कमल आदि कुसुमों से अपना श्रृंगार करती थी। उनकी अलका के वधुओं का यह चित्र है जिसके हाथ में लीला कमल है, अलक में कंद के ताजे फूल गुथे हुए हैं, मुख पर लोध के फूल की पांडुर रज मली हुई है, चूड़ा पाश में नव कुरुबक हैं, कानों में सुंदर शीरीष है तथा मांग के अगर भाग में कदम सुशोभित है। लेकिन धीरे धीरे जीवन का दायरा संकुचित होता गया, प्रकृति से संबंध टूटता गया, नारी की स्वतंत्रता कम होने लगी। वह दिन पर दिन दीवारों से घिरती गई, उसके प्रसाधन की सामग्रियां बदल चली। उन सामग्रियों में से कुछ तो केवल परंपरा पालन के लिए थी और शेष भोग विलास मूलक। अलंकृति में फूलों का स्नान, स्थान धातुओं ने ले लिया। स्वतंत्रता छिनते ही श्रृंगार प्रसाधन की दिशा में नए नए प्रयोग का उत्साह नारी से लुप्त हो गया। उसकी सौंदर्य भावना संकुचित और रूढ़िग्रस्त हो गई। सामंती व्यवस्था के अंतिम दिनों के समाज और साहित्य में इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। राजपूत शैली के चित्र इसके साक्षी हैं। काव्यात्मक अलंकार भी इस प्रभाव के सूचक हैं। वेदिकालीन कविता के अलंकारों में नवोन्मेष कम रूढ़ी पालना दिखे। रूढ़ी निर्वाह का संबंध तो हृदय से होता है नहीं, इसीलिए रीतिकालीन कविता के अलंकार एकदम ऊपर से आरोपित प्रतीत होते हैं। इस तरह अलंकारों के जबरदस्ती आरोप से भावधारा दबी हुई जान पड़ती है, इसीलिए वे भार मालूम होते हैं, साथ ही कृत्रिम है, क्योंकि जो अलंकार हृदय के स्वज उमंग के साथ धारण नहीं किए जाते उनके प्रति धारण करने वाले के मन में इतनी उदासीनता रहती है कि वे शरीर पर होते हुए भी शरीर के नहीं मालूम होते। पढ़ने वाले की अपेक्षा उन अलंकारों की कृत्रिमता प्रमाणित कर देती है। सहवादी कवियों ने रीतिकालीन कविता की उस रूढ़िवादिता और कृत्रिमता को अच्छी तरह भाप लिया, इसलिए उन्होंने कविता के रूप विन्यास में भावों को प्रमुखता दी, और भावों ने जिस तरह विचारों के क्षेत्र में रूढ़ियों का विरोध किया उसी तरह रूप विधान के क्षेत्र में। जब उन्होंने देखा कि रूप विधि संबंधी रूढ़ियों के संकीर्ण ढांचे में नवीन भाव अच्छी तरह नहीं अट पाते तो उन्होंने प्राचीन रूप विधि का विरोध सैद्धांतिक आधार पर किया। पल्लव की भूमिका में पंत लिखते हैं, नोटेड कामा, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव के अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए वे आवश्यक उपादान हैं। वे वाणी के आचार व्यवहार रीत नीति हैं, पृथक स्थितियों के पृथक स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं। इनोटेड कॉमन, मतलब यह कि जो अलंकार या शर्त पूरी न करे उसे छोड़ देना चाहिए, और इस आधार पर छायावाद ने पुराने अलंकारों की परिपाटी छोड़ दी। आवश्यकता अनुसार उन्होंने नई परिपाटी का निर्माण किया। वस्तुतः अंग्रेजी में जिसे फॉर्म कहते हैं उसका सटीक अर्थ संगति है, अर्थात फॉर्म वह है जिसमें भाव के साथ रूप की पूर्ण संगति हो। भाव और रूप में जहाँ असंगति दिखाई पड़े वहाँ रूप में कोई त्रुटि रह गई है। चारुता वही है जो प्रियेषु सौभाग्य फला हो। फॉर्म अथवा रूप को संगति कहने का दूसरा अर्थ यह है कि स्वयं रूप विन्यास के विभिन्न उपादानों और पक्षों में भी संगति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्वयं रूप विन्यास के भीतर संगति न होगी वह समष्टि में भाव के साथ संगति कैसे बैठा सकेगा। आचार्यों ने रूप विन्यास के इस आंतरिक संगति को ही सौंदर्य नाम दिया है। अंग प्रत्यंग का नाम यह सन्निवेशो यथोचितम संश्लिष्ट संधिबद्धम स्यात तत्सौंदर्य मृदाहितम। जब रूप विन्यास अंग प्रत्यंग से यथोचित सन्निविष्ट संश्लिष्ट तथा संधिबद्ध होता है तभी वह स्वाभाविक प्रतीत होता है। भावों के साथ उसका मेल भी तभी बैठ सकता है, और ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के आभूषण बिना ही शरीर विभूषित मालूम होता है। सुधार और सुडौल अंग यष्टि अपने आप ही शोभन है, इसी को आचार्यों ने रूप अथवा फॉर्म संज्ञा दी है। अंगान्य भूषितान्य केनचित भूषणादिना केन भूषित वदभांति तदरूपमिति कथ्यते। भाव और रूप की पूर्ण संगति के बाद कभी कभी काव्य की रूप विधि एक और कार्य करती है। अपनी सार्थकता प्रमाणित कर चुकने के बाद जब रूप अथवा फॉर्म किसी अपरिचित अतिरिक्त भाव की व्यंजना करता है तब वह प्रतीक हो जाता है। झंझा जब अपने ध्वनि से आंधी पानी दोनों का बोध करा देती है तो उसके रूप की सार्थकता पूरी हो जाती है, किंतु इससे आगे बढ़कर जब वह किसी हृदय की व्यथा और क्षोभ की ओर संकेत करती है तो अपनी सार्थकता के अतिरिक्त कार्य करती है। काव्य के क्षेत्र में रूप का यह अतिरिक्त कार्य प्रतीक और व्यंजना कहलाता तथा वस्तु जगत में लावण्य रूप की इस व्यंग्यात्मक शक्ति को मोती की उपमा का सहारे समझाते हुए आचार्यों ने कहा है कि वह मोती की आभ अथवा तरल छाया है। मुक्ता फलेषु छायास्तरलत्व विवांतरा प्रतिभाते यदंगेषु तल्लावण्यम उच्यते। छायावादी कवियों ने अपनी अनुभूतियों के अनुरूप रूप विधि का निर्माण करते समय रूप की संगति और सार्थकता के साथ साथ उसके अतिरिक्त संकेत की भी ओर ध्यान रखा। इसलिए छायावाद की रूप योजना में एक ओर जहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों के व्यंजक चित्र मिलते हैं, वहाँ दूसरी ओर प्रतीक योजना भी काफ़ी मिलती है। जब हम कहते हैं कि छायावाद ने पुराने अलंकार विधान को छोड़ दिया तो इसका क्या मतलब होता है, इसे भी समझ लेने की ज़रूरत है। ऊपर से देखने पर तो छायावाद में भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्मरण, रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास आदि प्राचीन अलंकारों के उदाहरण मिलते हैं। इसी तरह अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के भी चमत्कार छायावाद में मिलते ही हैं। फिर छायावाद ने किस बात में पुराने अलंकार विधान का परित्याग किया? थोड़ी गहराई में जाने पर छायावाद की अपनी विशेषता स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप मध्ययुगीन और छायावादी कवि के बादल वर्णन को लें। बादल के वर्णन में दोनों ही कवि औपम विधान का सहारा लेते हैं। काले काले बादलों को देखकर मध्ययुग के सेनापति कहते हैं कि आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई कह। और दूसरे कवि भी इसी तरह के उपमानों की सीमा में रहते हैं, परंतु पंत के बादल को देखें तो वह दर्जनों उपमानों का उपमेय दिखाई पड़ेगा। कभी वह जमुना जल में तैरते हुए विशाल जम्बाल जल की तरह मालूम होता है, तो कभी आकाश के मधुग्री में लटके हुए स्वर्ण भृंगों की तरह। कभी वह अनिल स्रोत में तमाल के पात की तरह आता है, तो कभी गगन की शिखाओं पर मकड़ी के जाल की तरह फैल जाता है। इतना ही नहीं, क्षितिज पर बादल की उठान संशय से मालूम होती है, उसका शीघ्र फैल जाना अपयशा प्रतीत होता है, डब में उसका उमड़ना मोह की तरह ज्ञात होता है और उसका फैलाव लालसा सा दिखाई पड़ता है। इस तरह की अप्रस्तुत योजना छायावाद से पूर्ववर्ती संपूर्ण साहित्य में खोजे न मिलेगी। रूढ़िभुक्त उपमानों की जगह छायावाद ने एकदम नए उपमानों की योजना की और इसी बात में उसकी नवीनता है, और यह नवीनता मामूली नहीं है। उपमाएं तो सभी कवियों ने दी, लेकिन उपमा कालिदास से ही कहा गया और कालिदास की क्षमता सामान्य नहीं है। उपमाओं की योजना से कवि की कल्पना शक्ति का पता चलता है। अनूठी और मार्मिक उपमाओं की खोज वही कवि कर सकता है जिसके पास अक्षय कल्पना शक्ति। छायावादियों के पास ऐसी ही कल्पना शक्ति थी। इस शक्ति के द्वारा छायावादियों ने कवि को रूढ़ उपमाओं के आधार पर भी नया चमत्कार पैदा कर दिया है। ग्रंथ के रूप वर्णन में पंत ने ऐसा बहुत किया है, जैसे आँखों के मील, खंजन और भ्रमर आदि रूढ़ उपमानों को लेकर इन पंक्तियों में नवीन वक्रता उत्पन्न कर दी गई है। प्रथम, भैसे मीन के लघु बाल जो थे छिपे रहते गहन जल में तरल, उर्मियों के साथ क्रीड़ा की उन्हें राल सा भय विकल करने लगी। कमल पर जो चार दो खंजन प्रथम पंख फड़कड़ाना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की वे विकल करने लगे हैं भ्रमर को। उपमाओं के क्षेत्र में छायावाद की एक विशेषता है कि जिसकी ओर आचार्य रामशुक्ल का ध्यान सबसे पहले गया, वह विशेषता यह है कि छायावाद ने अपना ध्यान प्रभाव साम्य पर विशेष रूप से केंद्रित किया, जबकि पुराने कवि आकार साम्य की ओर अधिक दौड़ते थे। जैसे रीतिवादी कवि बादल के लिए आकार साम्य पर हाथी की उपमा देते थे, लेकिन जब पंत ने धीरे धीरे उठ संशय से कहा तो उनका ध्यान बादल के धीरे धीरे उठने वाले धर्म की ओर गया। ऋषि को चंद्रिका की झंकार, तारिकाओं की तान वगैरह कहना इसी प्रभाव साम्य का परिणाम है। रत्नावली दूर चले जाने पर निराला के तुलसीदास को भी और भी मधुर लगने लगी। इस पर निराला कहते हैं कि जिस तरह दूर की तान मीठी लगती है, उसी तरह प्रिया भी दूर जाकर मधुतर होती प्रतीत होती। वह आज जो हो गई दूर तान, इसलिए मधुर वह और तान गान। यहाँ उपमा की मार्मिकता ऐसी बात में है कि वह प्रभाव साम्य पर आधारित है। प्रभाव साम्य की विशेषता बतलाते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि कामा सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुतों की ओर जाती है जो प्रस्तुत के समान सौंदर्य, दीप्ति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उदग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की भावना जगाते हैं। कामन प्रभाव साम्य के आगे चलकर प्रतीक योजना करता है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए शुक्ल जी आगे कहते हैं कि नोटट कामा छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधर्म अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आभ्यंतर प्रभाव सामने लेकर ही अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप या प्रतीकवत होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधु, श्वेता या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत माधुर्य के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या कांतिमान के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात या संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक अकुलता या क्षोभ के स्थान पर झंझा, तूफान, भाव तरंग के लिए झंकार, भाव प्रवाह के लिए संगीत या मुरली के स्वर इत्यादि। यूनाइटेड कॉमन। इस तरह छायावाद ने अपौमय विधान की एक नई परिपाटी उपस्थित कर दी। छायावाद ने जो आभ्यंतर प्रभाव साम्य पर जोर दिया, इसका कारण उसकी अंतर्दृष्टिदायिनी कल्पना शक्ति है। कल्पना जनित अंतर्दृष्टि के ही द्वारा छायावाद दो भिन्न प्रतीत होने वाली वस्तुओं में निहित आभ्यंतर साम्य का पता लगा लेता था। इस अंतर्दृष्टि के द्वारा छायावादी कभी चराचर के बीच स्थित सूक्ष्म संबंध सूत्रों को देखने में समर्थ था और अपने विराट अपम्य योजना के द्वारा वह मनुष्य मनुष्य के बीच तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करने का महान कार्य करता था। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं, यूनाइटेड कॉमा, साम्य का आरोप भी निस्संदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर काव्य में चढ़ा है। वह जगत के अनंत रूपों तथा व्यापार के बीच फैले हुए उन मोटे महीन संबंध सूत्रों की झलक सी दिखाकर निरस्ता के सोनेपन का भाव दूर करता है। अखिल सत्ता के एकत्व की आनंदमयी भावना जगाकर हमारे हृदय का बंधन खोलता है। जब हम रमणी के मुख के साथ कमल विस्मृति के साथ अधिखिली कालिका सामने पाते हैं, तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक ही सौंदर्य धारा से मनुष्य भी और पेड़ पौधे भी रूप रंग प्राप्त करते हैं। इनोटेड काम। इससे जाहिर है कि साम्य का विधान जितने ही विराट आधार पर प्रतिष्ठित होगा, हृदय में भी उतनी ही विराट भावना का अभ्युदय होगा। यह कार्य समर्थ और विराट कल्पना वाले कवि ही कर सकते। छायावादी कवियों ने यह कार्य अत्यंत सफलता के साथ किया, जबकि रीतिवादी कवि इसमें असमर्थ रहे। छायावादी कवि की उपमाओं ने धरती और आकाश को एक कर दिया। अमरी अंबर की रूपहली सीप में तरल मोती सा जल दी जब कांपता, तैरते घन मृदुल हिम के पुंज से जोत्सना के रजत परावर में पारावर में। यहाँ महादेवी ने अवनी और अंबर को जो विशाल सीप बना दिया है, उसमें अपार जलधि के तरल मोती की प्रशिष्टता कर दी है। वह छायावादी विराट कल्पना का प्रमाण है। महादेवी को यह रूपक इतना प्रिय है कि थोड़े से हेर फेर के साथ इसी को उन्होंने एक और गीत में दोहराया है। नीलम मरकत के संपुट दो जिनमें बनता जीवन मोती। नीलम आकाश और मरकत समुद्र, इन्हीं दोनों के बीच जीवन का मोती बनता है। यहाँ जीवन शब्द श्लिष्ट है। समुद्र का जल भी बादल बनकर आकाश में उठता है और फिर वही समुद्र में बरस कर मोती की सृष्टि करता है। पंत ने जब विहंगम सा बैठा गिरी पर सुहाता है विशाल अंबर कहकर अंबर के रूप में गिरी पर बैठे हुए विशाल विहंगम का चित्र आंखों के सामने रख दिया तो उसे विराट कल्पना का परिचय मिला। इसी तरह के आलोड़ित अम्बुदि प्रणुत्त कर शतदल फन मुक्त भुजंग सा इंगित कर करता नर्तन, उसे विराट उपमा है। अम्बुदि रूप में सैकड़ों फन उठाए हुए विशाल भुजंगम का चित्र, और निराला तो अपने विराट चित्रों के लिए प्रसिद्ध ही है, जहाँ केवल एक चित्र देना पर्याप्त होगा। युद्ध के मैदान से राम लौट रहे हैं, उनकी जटा खुलकर बाहुओं, वक्ष और पीठ पर फैल गई है और ज्योतिष्क नेत्र चमक रहे हैं। निराला राम के इस विराट रूप की उपमा उस पहाड़ से देते हैं जिस पर रात का अंधकार उतर चला है और जिसके ऊपर दूर दो तारिकाएं चमक रही हैं। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल उतरा ज्यों दुर्दम पर्वत पर नैशा अंधकार चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। छायावादी अंतर्दृष्टि ने यदि एक और विराट उपमाओं की योजना की तो दूसरी ओर लघु लघु अमूर्त उपमाओं का भी विधान किया। बात यह है कि छायावाद का दृष्टिकोण प्रधानतः भाववादी था, इसलिए छायावादी कवि प्रायः मूर्त वस्तुओं को भी अमूर्त से उपमित करते थे। मूर्ति के लिए अमूर्त उपमाएं पहले के कवियों ने भी दी हैं। स्वयं आदि कवि ने अशोक वन की सीता को एक पर एक कई अमूर्त उपमाओं से विभूषित किया है। हनुमान ने विरह विधुरा सीता को देखा तो ऐसा मालूम हुआ जैसे शोक के सागर में दुखी दुख की उर्मी उठ रही है। शिवि भक्तांगी क्षमा हो, भभूति ने भी सीता को उपमा विरह व्यथा से दी है, परंतु प्राचीन कवियों में इस तरह की अमूर्त उपमाएं बहुत कम हैं। छावादी कवियों की अपेक्षा प्राचीन कवियों की दृष्टि बहुत अधिक वस्तुवादी थी, इसीलिए वे मूर्ति की उपमा प्राय अमूर्त वस्तु से ही देते थे। उसके विपरीत अमूर्त उपमाएं देना छायावाद में साधारण बात हो गई थी। छाया तो यूं भी काफी सूक्ष्म वस्तु है, पर उसकी उपमा देते हुए पंत कहते हैं, गूढ़ कल्पना सी कवियों की, अज्ञाता के विस्मय सी, ऋषियों के गंभीर हृदय से बच्चों की तुतले भय सी। इस सूक्ष्मता और अमूर्तता के बावजूद छायावादी कविता ने चित्रात्मकता की रक्षा की अथवा चित्रात्मकता पर अधिक जोर दिया, यह कहना अधिक उचित होगा। छायावादी कविता की चित्रात्मकता के पीछे छायावाद की सामाजिक चेतना का सैद्धांतिक आधार है, और यह आधार है वैयक्तिकता। चित्र विशेष का होता है, किसी एक का होता है, वह विशेष एक चाहे कोई वस्तु हो अथवा व्यक्ति, सामान्य का चित्र नहीं हो सकता। सामान्य सूक्ष्म चीज है, इसीलिए वह चित्र रचना के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। चित्र का आधार तो विशेष होता है, परंतु उसका प्रभाव सामान्य होता है। चित्र विशेष के द्वारा सामान्य की अभिव्यक्ति करता है। छायावाद जड़ सामान्यता के विपरीत वैयक्तिक वैशिष्ट्य का प्रवक्ता था। व्यक्तिवाद उसका बीज मंत्र था, इसलिए वह सिद्धांत चित्रमयता का पक्षपाती था। सामान्य की अपेक्षा विशेष के प्रति आग्रह अन्य साहित्यों के रोमांटिक कवियों में भी देखा जाता है। अंग्रेजी साहित्य का रोमांटिक कवि ब्लेक स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इनोटेड कामा सामान्यकरण करना मूर्खता है, प्रतिभा का विशेषता केवल विशेषीकरण में ही है। सामान्य ज्ञान वह ज्ञान है जो मूर्खों के पास होता है। सामान्य प्रकृति क्या है, ठीक ठीक कहें तो सारा ज्ञान विशेष है। इनोटेड कामा बंद। रोमांटिक कवियों का ऐसा कहना स्वाभाविक है, क्योंकि वे कल्पना में निवास करते हैं, और कल्पना जीवी के लिए यदि कोई वस्तु अपने विशेष रूप में नहीं आती तो उसके लिए उसकी कोई सार्थकता नहीं। समाज में जिसने व्यक्ति को महत्व दिया, उसी ने कविता में विशेष क्षणों को महत्व दिया और प्रस्तुत योजना में विशेष चित्र को। उस युग के कवियों में विशेष के प्रति ऐसा आग्रह न था, उनमें चित्रमयता भी कम मिलेगी। द्विवेदी युग के कवि हर बात को सामान्य विचार के रूप में कहने के अवश्य थे, जैसे आहा ग्राम में जीवन भी क्या है, क्यों नहीं उसे सबका मन चाहे। ऐसी दशा में उनके लिए चित्र रचना का कार्य असंभव था। रीतिकाल के कवि भी प्राकृतिक सौंदर्य का नाम गिनाकर चला करते थे, क्योंकि उनके युग की सामाजिक चेतना व्यक्ति को प्रधानता देने वाली न थी। उनके युग में विशेष दब गया था, सर्वत्र जड़ सामान्यता का ही राज्य था। विशेषता तो वहाँ होती है जहाँ मौलिकता होती है, और मौलिकता वहाँ आती है जहाँ व्यक्ति विशेष को साहस के साथ प्रयोग करने की छूट होती है। लेकिन रीतिकाल में तो मौलिकता की जगह रूढ़ी का राज्य था। साहसिक प्रयोग की जगह रूढ़ियों के निर्वाह को सुरक्षित समझा जाता था। इस तरह रूढ़ियों ने निर्विशेष सामान्यता की हिम शीतल चादर सब पर छोड़ दी। छायावादी कविता में चित्रात्मकता कितनी है, यह स्वयं महादेवी ने अपने गीतों के समानांतर चित्र बनाकर प्रमाणित कर दिया है। तरल मोद से नयन भरे, कहते ही हमारे सामने आंसुओं से भरे हुए दो आंखें आ जाती हैं। इसी तरह यह मंदिर का दीप उसे नीरव जलने दो, चरणों से विहनित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की देहली, झरे सुमन बिखरी अक्षत से पलके मन के फिर पुजारे विश्व सो गया। पढ़ते ही मंदिर का सारा वातावरण आंखों सामने साकार हो उठता है। यह चित्रमयता थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी छायावादी कवियों में है। प्रकृति चित्र में छायावादी कवियों ने बिंब ग्रहण कराने में विशेष सफलता प्राप्त की है, इसे आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया। बात यह है कि उसे वस्तु का चित्र खड़ा करने के लिए उसको रूप और आसपास के वातावरण का पूरा ब्यौरा स्पष्ट रूप से देना पड़ता है, और छायावादी कवियों ने यही किया। जैसे नौका विहार में पंत चांदनी चर्चित लहरों का चित्रण पूरे ब्यौरे के साथ इस तरह करते हैं, साड़ी की सिकुड़न से जिस पर शशि के रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, हैले फूले जल में फेनिल। दृश्य चित्रण में छायावाद ने प्राय सभी इंद्रिय ग्राह्य विषयों के चित्र देने की चेष्टा की। अपनी कल्पनाचरित संवेदना के सहारे उन्होंने वर्ण गंध ध्वनि आदि के बड़े सूक्ष्म चित्र उतारे, जैसे लहरों पर बुझती हुई सांझ की लाली का चित्र, लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर पड़ गई नील ज्यों अधरों पर अरुणाई प्रखर शिशु से डर, और पावस की रात में निर्झर बादल बूंदे तथा दादर झेंगोर और पपीहों के भिन्न भिन्न स्वरों की यह अनुकृति। पपीहों की यह पीन पुकार, निर्झरों का भारी झरझर, झिंगुरों की झीनी झनकार, घनों की गुरु गंभीर घर, बिंदुओं के छंती छन छन कर, दादुरों के वह दोहरे स्वर। गंध का चित्रण बहुत ही कठिन है, फिर भी पंत ने एक जगह सरसों के फूलों के गंध के विषय में लिखा है, उड़ती भी ने तैलाक्त गंध। सफल चित्रणों के अतिरिक्त छायावाद ने कुछ बड़े ही दुर्लभ चित्र भी दिए हैं, जैसे पहाड़ों में वर्षा के प्रतिध्वनि के लिए शैल पावश के प्रश्नोत्तर, अथवा शैल में जलद जलद में शैल, या उड़ गया अचानक लोभ भूधर, फड़का पार पारक के पर, रवशेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा वो ऊपर अंबर, बस गए धरा में संशय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। इस तरह के बहुत से दुर्लभ पहाड़ी चित्र पंत ने खींचे हैं और हिंदी कविता की चित्रशाला में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह के भावाभेग और कल्पना चित्रों की लड़ी लगा देते हैं, उसी तरह वचन में विदग्धता लाते हैं। भावाभेग में वचन अपने आप बंकिम हो उठते हैं और विशेषण उलट पलट जाते हैं। एक विशेषण जिस विशेषता के लिए रूढ़ है, उसका प्रयोग प्रायः किसी अन्य विशेषता के लिए हो जाता है। निसंदेह विशेषणों के इस विपर्यय में भावाभेग के साथ ही कल्पना का बहुत अधिक हाथ रहता है। जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना कल्पना का ही काम है। कहें कि ईंट कहीं का रोड़ा लेकर भानुमति कुनबा जोड़े या नहीं, लेकिन कल्पना अवश्य जोड़ती है। एक विशेषण को उठाकर दूसरी जगह रख जाने का साहस कल्पना के ही जूते का है। इसीलिए छायावाद में इस तरह के विशेषण विपर्य बहुत हुए। जिस तरह उषा की सखी चित्ररेखा ने सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर उषा के पास ला सुलाया, उसी तरह छायावाद की सहेली कल्पना ने भी दूर दूर पड़े हुए अनेक विशेषणों और विशेष्यों को लाकर एक जगह कर दिया। जैसे सुरीला विशेषण बांसुरी का है, परंतु पंत ने इसका प्रयोग हाथ के लिए किया है। अब सुरीला हाथ का कर कभी हाथ की किस विशेषता की ओर संकेत करना चाहता है, इसके लिए पाठकों में भी यथोचित कल्पना की आवश्यकता है। इसी तरह तुतला भय, तुतला उपक्रम, मूर्छित आतप, तुमुल तम, मादक कर, शीतल भ्रूपाद, जीवित छाया, वृद्ध अनुभव, नील झंकार आदि प्रयोगों में विशेषण विपर्य के कारण उत्पन्न सौंदर्य का दर्शन किया जा सकता है। व्यंजक विशेषणों के प्रयोग में पंत सभी छायावादी कवियों में अग्रणी है। छायावाद के बारे में आलोचकों का कहना है कि इस काव्य शैली पर प्रतीकवाद की भी छाप थी। इस कथन की सत्यता परखना आवश्यक है। हरियुग की कविता में कुछ न कुछ उपमान रूढ़ होकर प्रतीक बन जाते हैं। जैसे मध्ययुग की कविता में खंजन अथवा मेन का नाम लेते ही आँखों का बोध होने लगता है। उपमानों की इसी रूढ़ के आधार पर कवियों ने रूप का अतिशयोक्ति का भवन खड़ा किया। जब तुलसीदास ने लिखा कि अरुण पराग जलज भरी नीके, सिसही भूष अहि लोभ अमेके, तो बिना किसी उपमेय के भी कुछ तो प्रसंग से और कुछ उन रूढ़ उपमानों से सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। हम समझ लेते हैं कि अरुण पराग सिंदूर है, जलज गोरी हथेली है, अहि सांवली भुजा है, शुचि मुख है और अमृत उस मुख का लावण है। इस तरह यहाँ सिंदूर दान की प्रक्रिया की ओर संकेत किया गया है। जहाँ तक ऐसे प्रतीकों के प्रयोग का संबंध है, छायावाद ने कुछ नए उपमानों के प्रयोग की पुनरावृत्ति अथवा संगानुकूलता की सहायता से रूढ़ बनाने की चेष्टा की है और इस तरह के प्रतीक रूप में ग्राह्य होने लगे। जैसे उषा का था उर्मे आवास, मुकुल का मुख में मृदुल विकास, चादनी का स्वभाव में भास, विचारों में बच्चों के सास। यहाँ उषा, मुकुल, चादनी आदि उपमानों के संकेतात्मक प्रयोग से स्पष्ट है कि कवि इसका प्रयोग प्रतीक रूप में कर रहा है। ये अपने किसी गुण या धर्म विशेष की ओर लाक्षणिक संकेत कर रहे हैं। आरंभ में ऐसे प्रतीकों को समझने में कठिनाई हुई, क्योंकि इनकी कोई परंपरा न थी। धीरे धीरे युग की सामान्य भावधारा तथा सामाजिक चेतना के द्वारा ऐसा वातावरण बन गया कि वे प्रतीकों की सृष्टि की अर्थात पूर्व परिचित वस्तुओं में नवीन अर्थवत्ता भर दी। उन्हें पूर्व प्रचलित अर्थ में से विशेष अर्थ के लिए रूढ़ कर दिया, परंतु यह तो प्रतीकों का सामान्य प्रयोग हुआ। यहाँ तक प्रतीक लाक्षणिक ही है। इससे भी आगे बढ़कर छायावादी कवियों ने भी कभी कभी व्यंजनामार्गी प्रतीकों का प्रयोग किया। ऐसा प्रायः वही हुआ है जहाँ कुछ रहस्यात्मक सत्ता के संकेत है, जहाँ कोई वस्तु अपने सामान्य उपलक्षण का तिरस्कार करके अथवा सबसे आगे बढ़कर अपने से असंबद्ध प्रतीक होती हुई उसे अन्य वस्तु की ओर संकेत करती है, वहाँ उसे व्यंजनागर भी प्रतीक समझना चाहिए। ऐसी प्रतीक व्यंजना में छायावाद की रहस्य भावना का हाथ, कल्पना का हाथ है। छायावादी कविता की जिज्ञासु वृत्ति को प्रकृति में प्रायः किसी अन्य सत्ता का संकेत मिलता था। उस सत्ता को ठीक ठीक न देख पाने के कारण उसे वे रहस्य समझते थे। उनकी कल्पना शक्ति इतनी दूर तक तो जाती थी कि इन वस्तु प्रस्तुत वस्तुओं से परे कोई और सत्ता है, परंतु वह सत्ता क्या है इसका रूप निरूपण छायावादी कल्पना के भूति का न था। उस रहस्यात्मक सत्ता का आकर्षण चारुता और प्रेता से प्रभावित होकर मानव हृदय ने उस पर मानवीय रूप का आरोप कर डाला। इसके प्रति कवि का आकर्षण इतना अधिक था और इस आकर्षण में उसे एक विशेष प्रकार के अभ्यंतर रागात्मक संबंध का अनुभव होता था कि उसे प्रियतम अथवा प्रिय का पद दे दिया। इस विराट कल्पना के कारण छायावादियों ने यह मान लिया कि संपूर्ण चर अचर प्रकृति अथवा दृश्य जगत एक प्रतीक है। यह अपनी अभिधा और लक्षणा से अधिक एक विशेष सत्ता की ओर संकेत करता है। दृश्य से परे यह अदृश्य की व्यंजना करता है, ज्ञात अज्ञात की सूचना देता है। जब यह चराचर ही एक प्रतीक है तो उसकी एक एक वस्तु के प्रतीक होने में क्या संदेह। कल्पना की इस स्थिति में प्रतीकवाद की प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए दार्शनिक दृष्टि से प्रतीकवाद और रहस्यवाद का अभिन्न संबंध है। छायावाद की रहस्य कल्पना ने उस प्रेतम के रूप और उसे अपने संबंधों की अभिव्यक्ति अनेक प्रचलित अप्रचलित प्रतीकों में की। जैसे उस अज्ञात प्रेतम की रहस्यात्मकता के लिए प्रायः आवरण वाले प्रतीकों का प्रयोग किया गया। महादेवी की दृष्टि में रजत रश्मियों की छाया में धूमिल घनसा वह आता और कभी कभी करुणामय को भाता है तमके पर्दे में आना। यही नहीं कि वह छाया में आता बल्कि स्वयं भी धूमिल घनसा है। प्रसाद का भी कहना है कि उनका प्रिय एक तो गोधुली के दुधलके में आता है और दूसरे मुख पर घूंघट डालकर, परंतु उन्हें संतोष है कि आंचल में दीप लिया आता है। इसलिए उस भीतरी प्रकाश में आवरण के बावजूद कृष्ण कुछ मुख का आभास मिल ही जाता है। यह थोड़ा सा छिपना और थोड़ा सा दिखाना महादेवी के ही प्रिय जैसा है। उनका भी धूमिलघन रश्मियों की छाया में आने के कारण कुछ न कुछ दिख ही जाता है। प्रसाद कहते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए, जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। जितना छिपकर वह आता है उतना ही छिपकर उससे मिलन भी होता है। इस प्रच्छन्न मिलन को छायावादी कवियों ने प्रायः स्वप्न मिलन के प्रतीक से दिखाया है। महादेवी के यहाँ वह सपना बन बन आता। प्रसाद ने इसके लिए सूफी कवियों के मध प्रतीक को अपनाया है। उनका प्रिय बेहोशी की दशा में आता है अथवा कभी कभी स्वयं ही नशा बनकर आता है। मादकता से आए तुम, ज्ञान के आलोक में यह रहस्य भावना विलीन हो जाती है। इस मन स्थिति को उन्होंने जागृति होश अथवा चेतना के प्रतीकों द्वारा दिखाया है। ऐसे महादेवी का प्रिय जागृति पर जाता लौट, प्रसाद तो जिस तरह उसके आने पर नशे में रहते हैं उस तरह उसके जाने के बाद भी बेहोश रहते हैं। उनका प्रिय यदि मादकता की तरह आता है तो संज्ञा की तरह चला जाता है। कभी कभी यह नशा उतर भी जाता है तब ये व्याकुल होकर विलखने लगते हैं। उन्हीं के शब्दों में, हम व्याकुल खड़े विलखते थे उतरे हुए नशे से, और फिर उस प्रिय की खोज में निकल पड़ते हैं। इस खोज के प्रवृत्ति को छायावादी कवियों ने कभी कस्तूरी मृग और प्राय नदी के प्रतीक से व्यक्त किया है। नदी जिस तरह समुद्र की ओर से किसी आंतरिक आकर्षण का अनुभव करती हुई वेग से उसकी ओर दौड़ती चली जाती है, उसी तरह यह हृदय भी उसके आकर्षण में एक तरफ दौड़ता चला जाता है। प्रसाद की गंगा विश्राम मांगती अपना, जिसका देखा था सपना। और पंत नदी के विषय में जिज्ञासा करते हैं कि माँ उसको किसने बतलाया उस अनंत पथ का पथ अज्ञात। इस संपूर्ण रहस्यात्मक प्रतीक योजना का सामाजिक कारण है। उस समय समाज में जो नई व्यवस्था आ रही थी उसके विषय में कवियों का ज्ञान धुंधला था। जो कुछ नया आ रहा था उसे कुछ कुछ तो वे अनुभव करते थे परंतु पूरा पूरा समझ न पाते थे। उनके लिए यह परिवर्तन अनुभव गम्य तो था परंतु बुद्धि गम्य न था। और सबसे बढ़कर तो यह कि उस परिवर्तन के मूल कारण का उन्हें ठीक ठीक ज्ञान भी नहीं था। इस परिवर्तन के पीछे कौन सी सामाजिक शक्ति काम कर रही थी इसका विवेक उन्हें स्पष्ट रूप से न था। इसी को काव्यात्मक भाषा में उन्होंने यूँ कहा कि वह प्रियतम अज्ञात है, आवरण में आता है और सपने में मिलता है। परंतु ध्यान देने की बात है कि छायावाद में रहस्य प्रतीक बहुत थोड़े हैं। ऐसे प्रतीकवादी रचनाएं छायावाद में बहुत कम हुई। उन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं जिनमें प्रसाद के प्रतीक अन्य प्रस्तुत विधानों की तरह प्राय रूढ़ और शुक्ल जी के शब्दों में सांप्रदायिक हैं। अन्य कवियों के प्रतीक भरसक नए हैं।